नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीड के साथ व्यापार वार्ता प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
It is clearly our responsibility.
इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के समन्वय से विकसित की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। नाविकों को इस पहल से चरणबद्ध निकासी और पारगमन योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने की उम्मीद है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचे। एक रिपोर्ट।
जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खाड़ी देश की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में हाल ही में हुई अमेरिका ईरान कूटनीतिक प्रगति, होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति अमरीका की प्रतिबद्धता को दोहराया। 3 दिन के खाड़ी दौरे के दौरान रूबियो कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि 2 दिन की बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इनस्पेस और अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इनस्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
यूक्रेन की सेना ने रूस के एक प्राकृतिक गैस परिशोधन संयंत्र और 2 उपग्रह संचार केंद्रों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार इस हमले में ओरेनबर्ग गैस परिशोधन संयंत्र को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना ने रात भर में 323 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में ये लगभग $60 अरब तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
कांगो में इबोला के अब तक 1094 मामले सामने आए हैं। इससे अब तक 277 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक महामारी रिपोर्ट में साप्ताहिक आधार पर पुष्ट किए गए मामलों में वृद्धि दर्ज की है। युगांडा में भी एक इबोला मामले की पुष्टि हुई है, जिससे वहां मामलों की संख्या 20 हो गई है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को स्वास्थ्य आपातकाल जैसी गंभीर चुनौती बताया है। कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। फ्रांस में कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। देश के दक्षिणी पश्चिमी शहर पिसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी से राहत पाने के लिए जलाशयों और समुद्र तटों का रुख करने वाले लोगों में डूबने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी हालत गंभीर बने हुए है। वहीं ब्रिटेन में मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।